पृष्ठ 5, बोध के नए धरातल। वर्तमान परिवेश से प्रतिबद्ध साहित्य जिस बोध को वाणी दे रहा है, वह नया धरातल लेकर जन्मा है। जन्म से ही इस धरातल पर मनुष्य मजबूरियों की बैसाखियों के सहारे चल रहा है। उसकी गति स्लत है, दृष्टि परिवेश की धुंध गई है, हाथ विवशता के कारण जहां तहां चिपक गए हैं और मानस एक उत्कांति व विक्षोभ से भर गया है। ऐसी स्थिति में असंगत परिवेश ने कतिपय नए जीवन मूल्यों को भी प्रेरित किया है, फलतः बोध के नए धरातलों की निर्मित हुई है। कथ्य और शिल्प दोनों ही स्थितियों में बोध का नयापन देखा जा सकता है। नए जीवन मूल्य बाहर आने को कसमसा रहे हैं, साथ ही इस कार्य के लिए अभिव्यंजना की नई शैली विकसित हुई है। किसी एक ही युग में अति लोकप्रिय और प्रचलित साहित्यकार के रूप कालांतर में परित्यक्त और यदा कदा तिरस्कृत तक हो जाते हैं। बोध की नई भूमिका नए साहित्यिक रूप और नई अभिव्यक्ति व शैलियों तक में दिखाई देती है। कारण साफ है, प्रत्येक युग का साहित्य जैसे अपने समय की कोख से जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक नया युग अपने साथ साहित्य ही नहीं जीवन की समस्त सृजनात्मक गतिविधि के प्रति मान भी साथ लेकर आता है। अतः यह प्रश्न साहित्य चिंतकों, अध्येताओं और स्त्रष्टाओं के लिए महत्वपूर्ण व मौलिक है कि वे कौन से मूल्य हैं जिनके कारण अलग अलग युगों में साहित्य का कथ्य और शिल्प नया होता जाता है। साहित्य में प्रकट होने वाले नए मूल्य पहले पहल शंकित दृष्टि का शिकार होते हैं, फिर परंपरा से विच्छिन्न होने के कारण उपेक्षित और कभी कभी प्रश्निल दृष्टि का आघात सहते हैं। कारण आकस्मिक रूप से उदित कोई भी मूल्य जब तक परंपरा और नवीनता का संघात सहकर स्निग्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे अनेक संघर्षों और स्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। बोध के जो नए धरातल निर्मित हुए हैं, उनमें मूल्यों का स्थान पहला है। मूल्यगत नवीनता आज त्रिआयामी है। परिवेश के दबाव के कारण सामाजिक चेतना के नए स्तर और उसी से संबंध भावलोक का सृजन पहला आयाम है। परंपरा और नवीनता के मैल से बनी नई समन्वयात्मक चेतना दूसरा आयाम है। इन दोनों आयामों के साथ तीसरा आयाम शिल्प संरचना की नवीनता है। वर्तमान साहित्य चिंतन में इन तीनों ही तत्वों के कारण एक विक्षोभ और हलचल पैदा हो गई है। आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, वह सुविधा प्राप्त व्यक्ति मानस का उच्छलन नहीं है, वह अब कुछ विशिष्ट अवकाश भोगी व्यक्तियों, रसिकों और मर्मज्ञों का ही भाव विलास अथवा भावदान ही नहीं रहा है, और न कुछ एक पृष्ठ 6 तथाकथित अथवा वास्तविक उदात उच्च महान भाव दशाओं अथवा चरित्रों की उद्भावना तथा अभिव्यक्ति तक ही सीमित रह सका है। आज का साहित्य आज के किसी भी संवेदनशील साधारण नागरिक की आत्मोपलब्धि और आत्माभिव्यक्ति का साधन है। यही नहीं, साहित्य की महानता आज केवल महापुरुषों और महान भावनाओं के चित्रण तक ही सीमित नहीं है। आज किसी अत्यंत ही साधारण जीवन की सरल कहानी और गाथा भी साहित्यिक गाथा को जन्म दे सकती है। न केवल हम मर्यादा पुरुषोत्तम अथवा धीरोदात्त नायक से आगे बढ़ गए हैं, बल्कि एक प्रकार से होरी और शेखर के युग से भी आगे बढ़ आए हैं। आधुनिक साहित्य के भाव जगत में विस्तृति है। प्राचीन साहित्य की अपेक्षा नए साहित्य में भावनाओं का यह विस्तार मानवतावादी दृष्टिकोण का पोषक है। विशिष्ट के स्थान पर साधारण की प्रतिष्ठा और उसमें भी नवीनता का अन्वेषण आधुनिक साहित्य का सबसे पहला मूल्य है। समकालीन साहित्यकार अपने भाव जगत में हिम शिखरों का अन्वेषी नहीं है, वह तो साधारण से साधारण व्यक्ति को उसके भाव संघर्ष और जीवन को अपनी रचनाओं में उतार रहा है। हिमशिखरों का सौंदर्य और उसके आदर्श आज के रचनाकार के आदर्श नहीं रह गए हैं, इसके अतिरिक्त उसने धरती की खोज की है। उस मिट्टी में रचे बसे कणों को उठाया है जो आम आदमी के पसीने से आर्द्र और संघर्षी जीवन का रंग अपने में समेटे हुए है। यही कारण है कि महान नायकों और आदर्श पात्रों के स्थान पर शेखर जैसे शिक्षित, हरवंश और अंतर्द्वंद पीड़ित, मनोज जैसे अस्तित्व कामी, श्यामा जैसी भटकती नारी व नीलिमा जैसी महत्वाकांक्षिणी और मैले आंचल में लिपटे अनगिनत धूल धूसरित नारी पात्र साहित्य में स्थान पाने लगे हैं। आधुनिक साहित्य के भाव जगत में जो नए प्रतिमान अनुस्यूत हैं, उनका एक छोर परंपरा से संबंधित है। वर्तमान जीवन का यथार्थ अपनी प्रस्तुति में परंपरा से एकदम कटकर नहीं चल सकता है। युग की भाव दशा और बौद्धिक अवधारणाओं के साथ सांस्कृतिक परंपरा का संबंध नए साहित्य की मौलिकता का ही एक आयाम है। कोई भी नवीनता आसमान से नहीं टपकती है, उसे अपनी स्थापना और प्रसारणा के लिए परंपरा के रस ग्रहण करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में नवीनता और परंपरा का जो नया सामंजस्य उद्भूत होता है, वह नए साहित्य में भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए महाभारतीय प्रसंगों को ही लीजिए। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग में महाभारत के जिन प्रमुख पात्रों को लिया गया है, वे व्यक्तित्व विशेषण के नए घटक प्रस्तुत करते हैं। आज पृष्ठ 7, स्थिति और भी बदल गई है। आज तो कर्ण के हाथ का टूटा पहिया अभिमन्यु के चक्रव्यूह में पिसते क्षण की व्यथा और अंतर्दाह से अभिशप्त व संत्रस्त अश्वत्थामा ही वर्तमान युग की मनस्थिति का वाहक बन गया है। कविता, कहानी, नाटक और उपन्यासों में ऐसे पात्रों को स्थान दिया जा रहा है जो समकालीन जीवन की विसंगतियों व विडंबनाओं का विषपान करके भी जीने की कामना से वलियती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज साहित्यकार परंपरा का पुनः परीक्षण कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में उसके औचित्य को प्रमाणित करने के लिए उसे बुद्धि की कसौटी पर कस रहा है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में अनेक विस्मृत, उपेक्षित प्रसंग और रंगरूप समकालीन परिवेश में नई प्रतिष्ठा पा रहे हैं। लोक जीवन और लोक संस्कृति की ओर बढ़ता हुआ आकर्षण अथवा रुझान इसी तथ्य को रेखांकित करता दिखाई देता है। नेमीचंद जैन ने ठीक ही लिखा है कि आज का साहित्यकार अपने भाव जगत के अधिक संस्कृत, विकसित और समुन्नत रूपों का स्रोत लोक संस्कृति में खोजकर अपनी सांस्कृतिक परंपरा को एक नया ही आयाम दे रहा है। सांस्कृतिक परंपरा आज न केवल साहित्यकार के लिए बल्कि प्रत्येक प्रबुद्ध और संवेदनशील पाठक के लिए नई व्यापकता और गहराई प्राप्त कर रही है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि नया साहित्य परंपरा और नवीनता के सामंजस्य से जो परिवेशवाही नए मूल्य प्रस्तुत कर रहा है, वह उसके बोध की नवीनता का ही प्रतिफल है। परंपरा और नवीनता के संघात से निर्मित जीवन मूल्य न केवल कविता में अपितु कथा साहित्य में भी पूरी स्पष्ट रेखा बनकर दिखाई दे रहे हैं। नया साहित्य बोध के जिस नए धरातल पर स्थित है, उसमें व्यक्तिवादी चेतना का स्वर भी प्रमुखता से मुखरित दिखाई देता है। आधुनिक साहित्य की नई पुरानी सभी विधाओं में व्यक्तिवादी चेतना मुखरित है। जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और नए रचनाकारों, कवियों व कथाकारों सभी में व्यक्तिवाद अधिक उभरा है। फ्रायड ने चेतन और अचेतन संबंधी खोजों के सहारे मानव मस्तिष्क के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया है। यह अन्वेषण व उद्घाटन व्यक्तिवादी जीवन पर हुआ है। अज्ञेय, जैनेन्द्र, जोशी व मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे का स्वर व्यक्तिवादी है। भारती का गुनाहों का देवता और नरेश मेहता के प्रायः सभी उपन्यास इसी जमीन पर खड़े दिखाई देते हैं। व्यक्तिवादी मूल्यों के विकास, पोषण और अभिव्यंजन में अस्तित्ववादी दर्शन का भी विशेष हाथ है।